तो हमारे को तो उद्देश्य उच्च दर्जे का जगदान कब करना चाहिए। एक ही क्रिया किंतु भाव के हेर फेर से जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तीन भाई थे, वो गंगा किनारे बैठ करके और जंगल के वहां बड़ी तपस्या कर रहे थे, बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे, और समझो कि उनका दिन रात यही काम था। बहुत अपने समझो कि तपस्या करते थे और क्या करते थे, यज्ञ करते थे, दान देते थे, तीर्थ करते थे, व्रत करते थे, उपवास। तीनों भाई की क्रिया एक बड़ा, एक भाई कोई वहां गया चौथा, देख कर उनके सबको दम हुआ, बोले बाबा देखो ये अपने कितने जोर का तप करते हैं, कितना कष्ट रहते हैं। एक भाई से पूछा, आप तप ऐसे क्यों करते हो? बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान में प्रेम होने के लिए। बोले वास्ता ये आपका तप तो परम आपने सात्विक है, बहुत ऊंचे दर्जे का सात्विक, बड़ा दानी है, आपका क्या कहना। दूसरे भाई से पूछा, भाई तुम जो तप करते हो, तीनों भाई तुम तो बड़े महात्मा पुरुष हो, कि बड़ा अच्छा तप करते हो, तुम भी बड़ा अच्छा तप करते हो। बोले तुम्हारी तप की क्रिया तीनों की बराबर, यज्ञ की क्रिया, दान की क्रिया सबकी सहेली है, तुम किस उद्देश्य करते हो? वो बोले मैं तो अपने पुत्र के वास्ते और सुख की प्राप्ति के। पर ठीक है, उससे तो तुम्हारा बड़े भाई से थे, तुम्हारा जो भाव है बहुत नीचे दर्जे का। अरे जिससे परमात्मा मिले उससे आपका समझो कि एक मामूली वस्तु लेकर खुश हो जाना, ये कितनी बड़ी गलती की बात है। तुम तो गलत रस्ते क्यों करो? इस तरह से पूछा कि तुम क्यों करते हो? उसने कहा साहब हमारा हमने पूछी, बोले बताया ना क्या है? बोले हमारे शत्रु के यहाँ कच्चे बच्चे और सब भर गया, आग लग गया। बोला तुम्हारा भाव तो बहुत खराब है, उसके तो कच्चा बच्चा मरेगा कि नहीं मरेगा, समझो कि बात की बात है, और तुम तो भैया घोर नरक में जाओगे। और देखो तीनों की क्रिया समान और फल में इतना आकर इतना अंतर की राज्य। तो ये सब बातों ने सोच कर करके हमको उचित भाव से थी ये सब कर्म करने चाहिए। तो दया की बात मैं कह रहा था, और दया के मैं आपको भैंस बताता था। तो ये जो हमारे को भगवान ने जो पदार्थ दिए हैं, और इनके मां हम भगवान की ये दया मानते हैं कि बस अपनी पुत्र धन धन किया और शरीर में आरोग्य था, ये सब पाकर के खुश होते हैं। ये हमारे पर भगवान की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, उन सबको अपने ऐश आराम और भोगने लगाते हैं। तो ये एक प्रकार से भगवान की दया का है, आप समझे नहीं, मामूली दया का है समझे। इसकी दया तो भगवान की बड़ी भारी है, किंतु तुम एक प्रकार से उसको बिना समझे बिना और अल्प लाभ उठा रहे हो। और जो आदमी उसको खराब काम में लगा रहा है वो तो रहस्य उल्टा समझ रहा है, वो तो अपना नरका मार्ग बना रहा है। हमारे भीतर में जो बल है उससे नर्क भी होगा और मुक्ति भी। मुक्ति कैसे है कि कमर कस करके भगवान के भजन ध्यान को मैं लग जाऊं, पर भगवान की प्राप्ति के लिए अपना जीवन अर्पण कर दें, तो सबसे बढ़कर के हमारा जमीन साफ हो गया। और उस बल को समझो कि व्यविचार में लगा दें, उस बल को दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में लगा दें, मदरा पीने में एक माने खुटे काम में लगा दें उस बल को, तो उसका फल नरक है। यही बात आपने पैसा में रुपया के मां एक भाई समझो कि वह रुपया परमार्थ में लगाता है लोगों के कल्याण के लिए, तो वो समझदार है और उसका रुपया जो है सफल हो रहा है। अब दूसरा एक भाई आपने वो रुपयों को अपने कुमार्ग में लगा है, तो इन रुपयों से उसको नरक होगा, तो वे रुपये उसको नरक देने वाले। और जो आपने परोपकार में लगा है उसका फल उसको स्वर्ग है, और उस परोपकार में लगा कर यदि निष्काम भाव से लगा हुआ है तो उसका फल है तो परमात्मा प्राप्त। ये कितना डिफरेंस हो गया। ऐसे हमारे में जो बुद्धि है, एक भाई की अपनी बुद्धि, ये अंग बम जो है और बड़े बड़े बम प्याल के अंदर लगाता है कि भाई जल्दी से जल्दी और सारी दुनिया के लोग कितने बम में मर जाए, तो मनुष्यों के मारने के लिए सोचता है कि ऐसा कोई एटम बम बनाने कि जिसमें समझो कलकत्ते जैसा शहर दो चार बम में स्वा आ सकता, तो उसमें बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। वो अपनी बुद्धि किस काम में खर्च करता है कि घोर नरक में जाने के काम, और एक भाई ऐसा बुद्धि लगाता है कि दुनिया दुखी हो तो इनका शीघ्र उद्धार कैसे हो, इन सब का कल्याण कैसे हो, इस विषय में अपनी बुद्धि लगाता है, तो वो एक प्रकार से सत्काम के वहां बुद्धि लगाता है। उसका बुद्धि का सदुपयोग करना है, उसके विपरीत करना, दुरुपयोग करना है। तो भगवान ने हमारे को जो बल दिया है, बुद्धि दी है और आरोग्यता दी है और धन दिया है, उपयोग सत्काम के मां करना चाहिए। और ऐसे ही उत्तर स्त्री और जो कुछ हमारा देगा है उसको उत्तम काम के मां लगाना, और सो भी निष्काम भाव से। तो उन रुपयों को, स्त्री पुत्र धन को पाकर के हम ऐसा आराम के मां आपने लगाना है, अपने को समझे भगवान की दया तो वो कुछ भी दया का रस नहीं समझा। और यदि कुकर्म में लगावे तो भगवान की दया नहीं, भगवान का कोप होगा तुम्हारे, जो जिसका फल तुम्हारे को नरक हो, उसका उपयोग ठीक किया तो उसके लिए तो भगवान ने उत्तर चीज दी है। तो जिस काम के उद्देश्य से आपको चीज भगवान के यहां से मिली है उसी काम में लगाया जाए, वही बुद्धिमत्ता है, ये उस दया का रहस्य समझना है। तो अनुकूल पदार्थों की जो प्राप्ति में दया का प्रश्न करना यह है कि अनुकूल, मन के अनुकूल जितने जो पदार्थ मिले हैं, स्त्री पुत्र धन रुपया आरोग्यता और जो कुछ पदार्थ आपको बल बुद्धि वीर्य तेज जो कुछ आपको मिला है, इन सबको जिस काम के लिए मिले उस काम में लगाना, मिले परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के काम मन लगा देने तो इनका उपयोग ठीक है और उस दया का तत्व आप ठीक समझे। और मन के विपरीत कोई आकर के प्राप्त हो तो उसमें भी भगवान की दया का दर्शन करना चाहिए। विपरीत में वो विपरीत में तो विशेष दया भरी हुई है, जो दया अनुकूल पदार्थों में है उससे ज्यादा दया विपरीत पदार्थों के वहां भरी हुई है। तो उसमें किस प्रकार से हम विचार करें, इस विचार ये करना चाहिए कि आपके पास में रुपया है और समझो कि किसी कारण से आपके गठी लग गई, वो रुपया स्वाह हो गया, या आपके मकान के घर के गोदाम के आग लग गई तो स्वाहा, तो यह भगवान की विशेष है। यह विशेष दया कैसे, ये जो एक प्रकार का जीवन मिट गया खत्म है, अब ये काम से बैठ कर अपना भजन ध्यान करो, ये भजन ध्यान के मां बाधा थी तो भगवान ने मिटा दी। तुम क्या कर रहे थे, बोले साहब हम तो बड़े अहंस आराम के मां थे कि भी खूब अहंस आराम हो गए, हमारा बड़ा ख्याल था कि व्यापार करके रुपया कमाएंगे, रुपया कमा करके फिर उससे भोग हो गए, अहंस आराम करेंगे। बोले इसीलिए भगवान ने आपके बाधक समझ करके मिटा दी। स्त्री मर गई, बोले भी इसमें भी भगवान की बड़ी भारी दया, और इसमें क्या दया, स्त्री जो है तुम्हारे दिग्न रूप थी, मर गई तो की बात है, अब अपना भजन ध्यान करो, ये समझ कर कोई स्त्री को मार नहीं डालो, जो कुछ हो जाए ईश्वर की इच्छा से उसमें दया मानने का आपको बतलाया जाता है। ऐसे ही घर के मां कोई प्यारा से प्यारा लड़का मर गया, स्त्री का कोई पति मर गया, जो भी कुछ घटना हो तो ये समझना चाहिए कि सब में भगवान की दया भरी हुई है, अपने समझ में नहीं आती वो बात, चाहे न हो किंतु भगवान का कोई भी विधान हो उसमें दया समझे। तो स्त्री उसका पति मर गया तो यारी विधवा क्या तो रोती है। तो बोले यदि पति जीता तो क्या होता, लड़का लड़की तो पैदा होता ना, और वो काजे में फूस जाते जिनके बहुत लड़के लड़की है उनकी दशा देखो क्या हो रही है। छोटे रहते हैं तब तो उसके कपड़ा चोड़ते हैं, भजन ध्यान करने नहीं देते, पुस्तक लेकर बैठते तो खोज लेते हैं, फाज डालते हैं, फिर हो जाता है इसको क्या करे बच्चे को, बड़ा भाई आप दंड लड़का है। और वो बड़ा होकर के विवाह कर लेता है तो उसकी ओर से जो आती है वो एक प्रकार से हर वक्त जलाती रहती है, तंग करती है। तो भगवान ने आपको बता दिया इस बातों से कि तुम एकांत में बैठ करके अब मेरा भजन ध्यान कर। अब तेरा जो पति है वो तो हर मनुष्य का था, पांच भूत का पुत्रा था, अब भगवान का स्वरूप है तो दिव्य लौकिक है। भगवान कहते हैं कि ये पांच भौतिक जो आपने जल शरीर धारी एक तेरा पति और एक साथ साक्षात दिव्य चेतन स्वरूप जो भगवान उसको पति बनाना चाह कि इसे को पति बनाना चाह। अच्छा तो भगवान को ही तो वो तो एक प्रकार से थी, भगवान तो तैयार है ही, तो भगवान ही हमारे सर्वस्व है, स्वामी पति मालिक सखा सखा स्वामी सब कुछ भगवान। ये जो भाव है बड़ा ऊंचा भाव, इसलिए एक प्रकार से जो कोई घटना घटी तो उसमें उनके भगवान की दया। एक छोटी सी कहानी है कि एक प्रकार से भगवान के भक्तों की शिवजी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। एक दिन पार्वती ने कहा कि प्रभु भगवान के भक्तों का दर्शन मुझको भी कराओ। ठीक है, एक भक्त के गए, उसने बड़ी सेवा की, अतिथि समझ करके, तो नहीं समझे कि शिव पार्वती है, अतिथि समझ करके, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके वहां गए थे, सेवा की। बोले महाराज देखो इन्होंने बड़ी सेवा की, इनके घर में बकरियां हैं, उसकी से दूध दूह करके खीर बनाकर उसमें गुड़ डाल करके बढ़िया घर की पूरी बनाकर आपने खिलाया, तो इसलिए किसी बदले में देने की आप ईश्वर हो, सांद्र समान हो, बोले जरूर। आते वक्त में बोले तेरी बकरियां सब मर जाएगी। पार्वती बोली महाराज जी ने वरदान देने चाहिए शराब देने चाहिए, इसको अनिष्ट कर दिया आप तो। बोले नहीं मैं इसको बड़ो उपकार कर। बोले क्या को उपकार करिए। बोले फिर महीना के बाद छह महीना के बाद फिर गए तो वो भगवान के भजन ध्यान में मस्त हो गया। बोले पार्वती जब तुम देख अब ठीक है, वो ठीक था उस वक्त में तुम देखा, हमने देखा हमारा इसको पुरुष थी पांच मिनट की। बोले नहीं हाय धन हाय धन रुपया पैसा ये दूध बेचना वो करना बिलोना ये निकालो वो निकालो बड़े लंग भर में लगा हुआ था। तो बकरियां ही तो उसके बाद थी ना, वो चूना का चूना मर गया। ये ऐसे बुद्ध दो रह गए दोनों अपना भजन दान करते। तो मैं इसके हित के वास्ते उन सबको मारा। तो बोले हमारे शरीर में बीमारी होती है रोग, उसमें भी हमारा हित है। बोले बहुत ज्यादा हित है, कोई भी हमारे मन के विपरीत काम हुआ है तो उसके जिसके मां हमारा हित ही हो रहा है। और तुम तो यह समझना चाहिए बिना पाप के बिना बीमारी नहीं होती, और बीमारी के भोगने से तीन पाप क्षय होता है। वो आपने समझो कि पाप है उसका प्रायश्चित हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात की तरफ ये ध्यान देना चाहिए, दुख पाता है उस समय के बीच के में उसको ये बात याद आती है कि ये पाप का फल बीमारी है सब पाप। तो भगवान से कहता प्रभु मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा, अब की बार से मुझको माफ कर दो, फिर भी पाप करूंगा। तो पाप के करने में हिचक पैदा होती है और वो पाप से बचता है तो ये कितना उपकार। तो जब दुखी होता है भगवान को याद करता है तो ये भी बड़ी आनंद की बात है। दुख में सुमरण सब करे दुख में सुमरण सब करे सुख में करे न को सुख में में सुमर न करे तो दुख काए को दुख में भगवान को सब याद करते हैं, चाहे दुख मिटाने के लिए भी करो, और जब दुख मिट जाता है तो फिर नहीं करो। और यदि आनंद के वहां सुख में सुमर करे तो दुख पास में नहीं आवे। भगवान का सुमन होना चाहिए, वो ही बात समझने चीज है, और वो सुख कोई काम का नहीं जिसमें भगवान को भूल जाए। तो बहुत से जो भक्त हैं वे तो ये चाहते हैं कि भी भगवान का सुमन होना चाहिए और हमारे को सुख नहीं चाहिए। सुख के नाथ सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, दुख की जो पर पर नाम जपावे, सुख के माथे पर पत्थर पड़ो। यदि हम भगवान को हृदय से भूल गए और वो दुख भी हमारे लिए बन जा रही है जो क्षण क्षण के वहां भगवान को याद दिलाते। प्रीति देवी ने सिंधु की भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, जब जब हमारे पर दुख पड़ा तब तब आपकी समृति हुई और सुख में घूम जाते हैं, सो हर वक्त हमारे को दुख ही दुख होता है। इसलिए यह बात कही जाती है कि जो हमारे शरीर पर आपत्ति आती है, दुख आता है, वो बहुत ही उत्तम बात है। नामदेव के यहाँ घर में आग लगी, किसी ने कहा कि आपके घर का आग लगी, दौड़े नामदेव जी, देखा भी आधा घर समाप्त हो गया, जल पर कच्चा फूस का घर था, आधा बाकी रहा। तो बोले प्रभु अग्निदेव, आप एक प्रकार से इसका क्या अपराध जो आप भोजन पूरा कर नहीं करके आधा पेट भोजन नहीं पड़ो, एक प्रकार बच्चे लोग को उठाकर वो अग्नि में डाल दो, ये भगवान के भोग लगाया जाए। तो अभिप्राय यह है कि उनके तनिक भी चिंता नहीं हुई, उनका भाव बड़ा ऊंचा था। तो ये समझना चाहिए कि जो हमारे में कोई प्रकार की आपत्ति आवे, घर की आग लगे, या कोई लड़का मर जावे, या किसी स्त्री का पति मर जावे, या कोई भी आकर के समझो कि घर में मर जाए, प्यारा से प्यारा मर जावे, तो ये समझना चाहिए कि भगवान जो कुछ हमारे लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं। बोले प्यारे से प्यारा मर गया उसमें भीत है, बोले ये भीत है, तुम्हारे प्यारे से प्यारा था ना, तुम्हारा मन उस प्यारे में बसता कि उस भगवान, बोले हमारे जो प्यारे लड़के में, और लड़के आग लगी धन नष्ट हो गया तो तुम्हारा मन किस में बचा करता, रुपयों में बसता ना, बोले रुपयों में। तो भगवान ये सोचा कि रुपयों में इसका मन बसेगा, प्यारे पुत्र में बसेगा, तो ये एक प्रकार से मेरे से अपने वंचित रह जाएगा, ये सोच कर तुम्हारा उद्धार करने के वास्ते उनसे मन हटाकर अपने मर गया, अब पुत्र मर गया, बंदस्ट हो गया, अब उसमें तो मन नहीं जाएगा ना, वो तो मर गया मर गया। तो इन सब बातों को ख्याल में रख करके जो भी कोई घटना हो भगवान का विधान मान करके उसमें और विशेष खुश होना चाहिए, कोई वास्तव के मां हमारा उसमें परम हित है, परम हित हमारा उसी के बीच के मां है जो किसी भगवान करते हैं। तो अनिच्छा से और परीक्षा से जो कोई कार्रवाई होती है वो भगवान की मर्जी से ही होती है, भगवान ही करते और करवाते हैं, ऐसा देख करके हमारे को समझो खूब खुश होना चाहिए, खूब आनंद मानना चाहिए। भगवान के विधान को देख देख करके मन की जो विपरीत क्रिया होती है उसी में तो विशेष आनंद। आप सोचो कि आप हमारे मित्र हो, प्यारे हो, और मैं आपके कोई विपरीत काम करता हूँ तो वास्तु के मां उसमें कोई आपका हित है तभी करता हूँ, नहीं तो मैं आपका प्यारा नहीं, मित्र नहीं, बल्कि दुश्मन हूँ। जो वास्तव में आपका अनिष्ट करता हूँ तब तो दुश्मन हूँ, और आपका हित करता हूँ किंतु आपको वो हित नहीं दिख पा, तब एक प्रकार से आप रोते हैं, नाराज होते हैं। लड़का जो है वो एक प्रकार से समझता नहीं हमारा किस में हित है, इसीलिए वो लड़का नाराज होता है, दुखित होता है, रोता है, और उसके हृदय में ये बात समझ में आ जाए कि हमारी माँ है तो हमारा हित ही करेगी, आउट करेगी, आउट कर ही नहीं सके, तो वो एक प्रकार से थी, कभी नहीं होता और कभी आपने दुखी नहीं होता, समझता कि है हमारी माँ है। माँ लड़के को मारती है तो भी लड़का ऊपर से रोता है, किंतु भीतर में उसकी आत्मा में संतोष होता है। छोटा भी लड़का हो वो भी समझता है कि मेरी माँ है और माँ से मेरा अनिष्ट हो ही नहीं सकता, वो मेरी परम हितैषी है। तब एक छोटा लड़का माँ के विषय में इतना विश्वास करके उसके मन के विपरीत में भी रोता हुआ भी अपने भीतर में समझता है कि हमारा हित माँ करती है। डॉक्टर हमारे समझो ऑपरेशन करता है, हमारे शरीर को काटता है, तब हम यही समझते हैं भले डॉक्टर के लिए कि ये हमारा हित ही करता है, रोते भी है, दुख भी होता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है हमारे परम हितैषी है, जो कुछ अपने ऑपरेशन करते हैं उसमें अपना हित ही भरा हुआ है। बालक रोया करते हैं, समझदार को तो इस विषय में रोना चाहिए ही नहीं, शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शोक करने के लायक कोई पदार्थ है ही। तो इस तत्व है इसको समझ करके जो हमारे मन के विपरीत है उसके बीच के और ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। जैसे बताया था आपको कि मन के विपरीत कार्य को देख करके कि समझो कोई एक महात्मा पुरुष है और वो हमारे मन के विपरीत करता है, वो हमारा परम हितैषी है, किंतु हमारा उनका मतभेद होता है, तो मतभेद होने से वो बात बुरी मालूम देती है, तो फिर महात्मा कह रहा है। अरे महात्मा तो उसके साथ तो मतभेद होना ही नहीं चाहिए, हमको महात्मा के अनुकूल बनना चाहिए कि महात्मा को अपने अनुकूल बनना चाहिए, अपना कल्याण तो उसके अनुकूल बनने में है, नहीं कि महात्मा को अपने अनुकूल बनाने में है। ये बात जब समझ में आती है तो फिर वो एक प्रकार से दुखी नहीं होता, वो बर्दाश्त कर लेता, सह लेता है, उसका मोह तीक्ष्ण श्वास करके श्रद्धा करके उसको जो बर्दाश्त करता है सह लेता है, ये एक प्रकार से नीचे दर्जे की श्रद्धा है। इससे और ऊपर दर्जे की श्रद्धा होती है तब तब एक प्रकार से वहां बर्दाश्त करने की नौबत नहीं आती, तो वो तो जो कुछ भगवान की या महात्मा की चेष्टा उसको देख देख करके खुश होता रहता है, और खुशी का भी दर्जा है, महात्मा की और ईश्वर की क्रिया उसका विधान को देख देख करके ये समझता है कि हो ये तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार, भगवान का दिया हुआ वरदान, महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये तो उनका प्रसाद है, बड़ी दया है, इस प्रकार समझ करके खुश होता है। और सभी जब और ज्यादा उसके तत्व है इसको समझता है, ज्यादा तत्व है इसको समझता है, तब तो ये देखता है कि ओ ये प्रभु भगवान की लीला हो, लीला को देख देख रही इतनी खुशी होती है, शरीर में रोमांच होते हैं, आंसू पात होते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता जितनी अधिक होती है उतना ही वो उसे महात्मा के रहस्य को परमात्मा के रहस्य को अधिक समझता है। मन के विपरीत कार्य को देख करके, मन के विपरीत कार्य को देख देख करके उसमें खुश हो, वो बड़ी एक महत्व की चीज होती है। तो देखो एक प्रकार से इस विषय में एक छोटी सी कथा है कि एक समय की बात है, अर्जुन के मन के मन ये थोड़ा अभिमान आया कि प्रभु मेरे समान आपका कोई और भी भगत है क्या, जो आप मेरे गुणों को हाँकते हैं और इतना मेरे से प्रेम करते हैं, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ रहते हैं, आप मेरे सखा भी हैं और मेरे आप बुआ के बेटे भाई भी और मेरे आप सारा भी प्रेम आपके साथ में हमारे कितने संबंध हैं, आप जैसे पुरुष के साथ में इतने संबंध हुए और इतना प्रेम रहना, इतना फिर संग होना, ये तो प्रभु हमारे कोई बड़ी भक्ति की प्रेम की बात है। हमारे जैसा भक्त और भी आपने है को देखा? अरे बोले हमारे तो बहुत है। बोले महाराज एक दिन मैंने भी दर्शन कराओ। उनके दिल में था कि मेरे बराबर कौन है, तो वे ठीक है उसको साथ ले गए, जंगल में गए, एक नौता केसरी सिंह पकड़ लिया, इतना लंबा इतना रुष्ट पुष्ट सिंह था, उस पर दोनों चढ़ गए। भगवान चाहो तो सिंह को पकड़ सके, हाथी को पकड़ सके, चाहे जिसको पकड़ लिया, भगवान को क्या है, वह तो उसकी बुद्धि फेर दे, मन फेर दे, चाहे जैसा कर लो। उस पर चढ़ करके कि शहर के महाराजा के यहाँ आए, राजा वहां ड्यूटी पर खड़ा था, तो आगे के दुर्जय पर पूछा कि राजा बोले है तो बुला दो। बुला दिया। हाँ महाराज आप यहाँ ठहरिए, यहाँ भोजन करिए। बोले ठीक है, भोजन तो हम करें, पर हमारे एक नियम है। क्या नियम है? कि इस वाहन को, अपने इस पशु को, इसको आगे भोजन देते हैं, बाद में हम भोजन बनाकर खाए। अच्छा महाराज इसके लिए क्या मंगा दिया जा, इसके लिए क्या मंगा दिया जा, सिंह क्या खाता है? बोले तो मांस खाता है। तो तुम बड़े धर्मात्मा पुरुष हो ना, तो तुमको एक प्रकार से दूसरे का तो मांस देना अच्छा नहीं हो, और हमारा सिंह तो खाता है मनुष्य का मांस, और ये बच्चे का मांस से ज्यादा खुश होता है। हम सोचते तुम्हारे एक लड़का है, उसका नाम रतन कंवर है। बोले हाँ महाराज। बोलो यदि एक प्रकार से हमारे को भोजन कराने की इच्छा है, तो पहला तुम्हारे लड़के को संजय वसो मार करके के चीर डालो और उसको ला करके खाने को। बोले महाराज उस पर तो मेरे एकले का तो अधिकार नहीं है, मैं मेरी तरफ से तो दे सकता हूँ, मेरी रानी का भी अधिकार है, पर लड़के की खुद की मर्जी पर बात है, तो उसको मैं पूछ रहा हूँ। आप थोड़ी बात ठहर गए, भीतर में गए तो लड़के से पूछा। लड़का बोला महाराज ये तो साक्षात भगवान है, ना नहीं करो, ये तो मौका लग गया अपने को उद्धार करने के लिए आए। रानी से पूछा, रानी बोली बहुत अच्छी बात। तो राजा जो कहे बोले महाराज हमको सबको स्वीकार है। बोले ठीक है, पर बात यह है उस लड़के को आरा लेकर क्रोध लेकर के तुम्हारे को तुम्हारी रानी को चीरना होगा कि जो आ गया। तो राजा और रानी उसे लड़के के मस्तक के ऊपर क्रोध रख दी और चीरने लगे। लड़का हाँफ रहा है, उस पर क्रोध चलती है, लड़का हाँफ रहा है और खून की जगह दूध निकल रहा है। लड़के का दो टुक कर दिया, यहाँ से चीर करके यहाँ तक चीर डाला, एक हाथ एक पैर, इधर में एक हार एक एक पर, आधा मुख आधा नाक एक आंख ठीक बीच में से आधा जो उसका जड़ है। बोले इसको खाने को दे दो, उसको दे दिया बाघ को, आधे के कपड़ा लपेट करके ऊपर। बोले फिर कभी काम आ। अब राजा और रानी बोले अब महाराज हाँ बोले अब भोजन करेंगे, पर एक बात है कि तुम्हारी रानी रसोई बनाओ। हाँ बोले क्या रहे? और जब फिर नौकर का आपका नहीं तुम ही भर जाओ। राजा जल भर लिया है कब का, और रानी रसोई बनाने लगी, रसोई तैयार होने कि महाराज भोजन तैयार। बोले अभी तुम्हारी रानी के आंखों में आंसू आते हैं, लड़के का फिक्र करती है, तो फिर हम तो भाई के रोते हुए भोजन नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज सोना से डबो, ये तो बेचारे इस प्रकार से आप उसको साथ है तो ठीक नहीं है महाराज। तो राजा ने कहा कि महाराज हमारी रानी जो रोती है ना, वो लड़के के दुख को लेकर के नहीं रोती, तो आधा जो लड़के का जो शरीर है वो तो आपके सिंह के काम आ गया, और उस आधे धर ने क्या अपराध किया वो आपके काम नहीं आया, इसलिए रोती है कि वो भी काम में आना था। बोली ये बात है, बोली ये बात। तो अच्छा भोजन कर, तो साथ में करेंगे हम लोग साथ में करो, तो तुम और तुम्हारी रानी दो और दो हम चार है ना, तो तुम चार जो पड़ोसा है वो तो पूरा और एक आधा, ऐसा पांच पड़ोसा तुम लगाओ। हरी लगा ठीक है, लगा और मंत्र को